ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय भ्राता जी पहुंच गए हैं, बहुत पंक्चुअल हैं समय के। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उगता हुआ सूर्य बड़ा मनोहारी होता है, उस सूर्य की लालिमा आकर्षित करती है, उसका तेज कहीं भी ऐसा नहीं जो चुभता हो। ठीक उसी तरीके से हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो यज्ञ रक्षक हैं, हमारे ब्राह्मण कुलभूषणों के नूर हैं, आपका मैं बोल लूं उसके बाद आपसे निवेदन करूंगी, जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आपका गीता के ज्ञान पर जितना अच्छा कमांड है, उतना विज्ञान पर भी आपका कमांड है। जितने दिव्य हैं उतने ही न्यायप्रिय हैं। लोकप्रियता, सहजता और सरलता का ग्राफ आप देख चुके हैं कल, कि किस तरह से बड़ी कठिन से कठिन बात को भी इतना हंसते हंसाते हृदय में उतार देते हैं कि जीवन का आधार बन जाए। और यही कारण है कि उनका विषय रखा गया है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। हमारे यज्ञ के वरिष्ठ चार भाइयों में आपका प्रमुख स्थान है। आपकी लेखनी से पहले भी कुछ रत्न निकले, बहुत सुंदर सुंदर बुक्स आपने लिखी थी छोटी छोटी, और आज भी गीता का अगुह्य ज्ञान हमारे सामने एक पुस्तक के रूप में है जो हर एक पढ़कर किसी को भी दे सकता है। तो भ्राता जी ने न केवल भारत में आध्यात्म की ये मशाल जलाई है, वरन विदेशों में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है, हिंदी साहित्य पर सम्मेलन हो या किसी अन्य विषय पर। और हमारे यहाँ जो राजनीति प्रभाग है उसके भी आप चेयरपर्सन हैं, और आज हम उनसे झोली भरेंगे कि कैसे भगवान से सर्व संबंध बनाकर अपने को उससे करीब लाएं। ओम शांति। लीजिए, एक और सुनहरा अवसर आपके पास पहुंचा। भ्राता जी ने यह संदेश दिया है कि अगर मन में कहीं कोई प्रश्न है तो उसे यूं ही दबा के नहीं ले जाएं, उन्हें लिख कर भेज दें और उनका उत्तर आपको उनके माध्यम से मिलेगा। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने संदेश में कहा है कि ज्ञान तो सबके अंदर अच्छी तरह से सबकी बुद्धियों में भरा हुआ है। वर्षों वर्ष हम ज्ञान सुनते आ रहे हैं, रोज सुनते आ रहे हैं, रिवाइज करते आ रहे हैं। इसलिए बाबा ने खास इशारा किया है, ये ज्ञान तो है, आपको क्या चाहिए ताकि उस ज्ञान को पूर्णतया हम ज्ञान स्वरूप बन जाए। वो जो आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने बहन जी को कहा है कि मुझे तो पता नहीं आपको क्या चाहिए, हो सकता है किसी को कुछ चाहिए हो, किसी को कुछ चाहिए हो, तो थोड़ा सा पता लग जाएगा तो हम उसी अनुसार आपसे बातचीत करेंगे। ज्ञान तो अथाह है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं भेजिए क्योंकि समय की सीमा मुझे दी गई है। जानकी दादी जी ने विदेश जाना है तो उनको आके आपको अपने आशीर्वचन देने हैं 11 बजे। धन्यवाद। इसमें कुछ प्रश्न तो ज्ञान के ही हैं, एक प्रश्न धारणा का है कि वो वही प्रश्न है जो हम आपसे कर रहे थे, जो हम सबके जीवन का है कि ज्ञान एवं समझ होने के बाद भी हम धारणा स्वरूप नहीं बन पाते, क्यों? आप देखेंगे जब हम बाप दादाजी से मिलते हैं तो बाप दादाजी हमेशा पूछते हैं ठीक हो, सब ठीक है, और वो इतने प्यार और इतना हमें शक्ति भर के पूछते हैं तो हमारा उत्तर एक ही होता है सदा, हाँ बाबा सब ठीक है। उस समय बाबा का इतना प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, इतनी लाइट माइट मिलती है कि हम एक ही उत्तर दे उस वक्त भरपूर होते हैं सामने, तो हम कहते हैं हाँ बाबा सब ठीक है। उसके बाद बाप दादा भी जानी जानन हार है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, फिर हम अपने आप कहते हैं कि बाबा ठीक है लेकिन जैसा मैं चाहता हूं ना वैसा नहीं, ये हम उसमें ऐड कर देते हैं, है सब ठीक पर जैसा मैं चाहता हूं ना वैसा नहीं है। ये जो हम ऐड करते हैं ये हमारा होता है जीवन के लिए लक्ष्य, कि हम चाहते कुछ और ज्यादा हैं, अभी तक वो हुआ नहीं है, वैसे ठीक है। बाकी सवाल तो मैंने मन में रख लिया आंसर देने के लिए, एक प्रश्न इसलिए है कि आपका मनोरंजन हो जाए, वो ये है घर में बच्चे और युगल से चिड़चिड़ापन क्यों कम नहीं होता। अच्छा, इसलिए आपका मनोरंजन हो जाए इसलिए वो मैं पढ़ देता हूं। एक प्रश्न और भी है कि जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आते हैं तो जो उस वक्त नशा था वो आज क्यों नहीं रहता, इन सब प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे जोड़ने की। तो कहने का भाव ये है कि हम जानते हैं कि हमें जहां से हमने शुरू किया था उससे आज में बहुत फर्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें भी शक है, हाँ? जब आप ज्ञान में आए थे और जो हम आज हैं उसमें तो फर्क है ना। मुझे एक चुटकुला याद आ गया, एक पिताजी अपने बच्चे से पूछ रहे थे कि 40 में 80 जमा करो तो कितना होता, और वो उत्तर दे रहा था 160, और पिताजी उसको शाबाश दे रहे थे और उसकी मां को कह रहे थे इसको लड्डू ला के खिलाओ बहुत अच्छा हमारा नाम रोशन करेगा। तो एक पड़ोसी गुजर रहा था, उसने कहा ये पता नहीं क्या कर रहा है, 40 और 80 160 और उसको लड्डू खिला रहा है। तो उसने हिम्मत करके पूछा भाई ये क्या बात है, कहता आपने सारी बात समझी नहीं है, आपने तीनों कालों को नहीं देखा एक काल को देखा है, किसी बात को जज करना हो तो उसका पास्ट भी देखना चाहिए फ्यूचर भी देखना चाहिए, आपने प्रेजेंट देखा है। यही प्रश्न इससे मैंने कल पूछा था तो इसने 190 कहा था, तो आज इसने तरक्की की है इसलिए इसको लड्डू दे रहे हैं। अच्छा, तो इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि जी आज हम ऐसे हैं तो आप ये देखिए कि हम कैसे से कैसे बन गए, इतना तो तसल्ली है ना कि तरक्की के रास्ते पर हैं, इसलिए बाबा हमें शाबाश रोज देते हैं, मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं कि एक दिन पूरा आंसर आ जाएगा, इसलिए आप भी हिम्मत रखिए। अब रह गई बात, ये होता ही है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे वातावरण से एकदम दूसरे वातावरण में आता है तो उसको डिफरेंस महसूस होता है, ठीक है ना। आप बहुत गर्मी से बहुत सर्दी में आ जाएं तो आप कहेंगे हा 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 बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही ऑपोजिट। लेकिन जब आप वातावरण में आकर उसमें रहना शुरू कर दें तो पहले वाला भूल जाता है, फिर आप उसी में रम जाते हैं। तो इसी प्रकार से पहले पहले जो हमें खुशी थी नशा था जोश था वो इसलिए था कि एकदम अपोजिट वातावरण से आने से एकदम जैसे ठंडी ठंडाइश हो जाती है। फिर जब अपनी दुनिया में आ गए, फिर इस दुनिया में अब हमें चलना है, फिर हमें आपस में चलना है, यहां तो सब ठंडे ही हैं, अब ये देखना उसमें कुछ ज्यादा ठंडे हैं, तो हम उस ज्यादा ठंडे के पास आने के लिए मेहनत करनी है थोड़ी, तो उसमें स्पीड कम है। आप सोचो, आज भी बाबा ने कहा है कि चार संगम हैं, लेकिन एक संगम हमारा कल्याण वाला है और बाकी तो नीचे उतरने वाले हैं। सतयुग त्रेता के संगम में क्या हुआ, चौथा हिस्सा चला गया कलप का और दो कला घट गई, फिर भी चौथा हिस्सा जाने में केवल दो कला घटी, तो आप देखिए पता भी नहीं लगता, 1250 साल में दो कला घट गई तो पता भी नहीं लगता। इसी प्रकार से अब आप जिस स्थान पर हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि एक चेंज हो रहा है। पहले क्योंकि एकदम दूसरे से आए थे तो दिखाई पड़ता था, लेकिन हमें यह तो पता है कि चेंज हो रहा है, इसलिए आप उसमें भी ये प्रश्न को दबा दीजिए कि हमें चेंज हो रहा है और किस तरह का चेंज हो रहा है। चेंज दो तरह का होता है, चेंज तो होता ही रहता है, एक नीचे जाने वाला और एक ऊपर जाने वाला, ठीक है। अब हमारा चेंज नीचे जाने वाला हो रहा है या ऊपर जाने वाला, क्या जवाब है आपका, है ना? क्योंकि समय ऐसा है, चढ़ती कला का है, जब चढ़ती कला के समय में है, जब किसी छोटे बच्चे को भी हवाई जहाज में बैठा दोगे उसने तो उड़ना ही है क्योंकि बैठ गया हवाई जहाज में। इसी प्रकार से ये समय चढ़ती कला का है, यहां तो हर चीज ऊपर जा रही है ही कल्याणकारी, और सतयुग ने तो आना ही है, तो फिर नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं है। थोड़ी हिम्मत कर लेंगे तो और ज्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक ऐसा बेल्ट होता है वो चलता रहता है, उसके ऊपर लोग खड़े रहते हैं, विदेशों में बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं ना, तो मीलों मील होता है वो, तो उसमें खड़े हो जाओ तो आप चलता रहता है, पर वो स्लो स्पीड पे चलता है, तो कई लोग उस चलते में भी चलते रहते हैं ताकि हम और जरा जल्दी पहुंच जाएं। इसी प्रकार से उड़ती कला तो है ही, तो आपने अपने आप को थोड़ा और ऊंचे करना है, और तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, मैं आपको बताऊं कि इसमें एक ही शब्द है जिसको हम कहते हैं स्मृति या अटेंशन। बस हमें अंदर में सूक्ष्म में तो है, लेकिन उस चीज की स्मृति थोड़ी सी बार बार आने से, बाबा हमें रोज स्टूडेंट बनने को क्यों कहते हैं, रोज ज्ञान स्नान करने को क्यों कहते हैं, कोई परीक्षा भी रोज रोज क्यों आ जाती है, ये तो हमारा रास्ता रेड कारपेट का बाबा बिछा दे कि बच्चे तो मेरे रॉयल हैं, अब इनके आगे रेड कारपेट बिठा दिया, सतयुग में जाओ, लेकिन परीक्षा ना आए तो भी हम लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ी परीक्षा आती रहे। अब कुछ बम फटे हैं, हम तो यहां बैठे हैं, पर थोड़ा कान में यूं तो रेंगती है ना कि भाई हाँ बाबा ने कहा था अचानक है, नहीं तो कहते हैं अचानक तो हुआ ही नहीं, जुलाई आ गई, इसलिए बाबा कहता है अचानक, मैंने अचानक आपको बता के थोड़ी आएगा। इसलिए परीक्षा भी हमारे कल्याण की है, शिक्षा भी हमारे कल्याण की है, कुछ हो गया वो भी हमारे कल्याण का है और कुछ नहीं हुआ वो भी हमारे कल्याण का है। बस अगर हम ये स्मृति रखते हैं कि भाई हमारे युग ही कल्याण का है, और उस युग में तो फल भी अपने आप मीठे हो जाएंगे जाके, अब फल को योग थोड़ी लगाते हैं, आज आपने खट्टा आम खाया, सतयुग में वो खट्टा होगा तो कहां गया, किसने ठीक कर दिया उसको, सोचने की बात है। आज आपके पांव में कांटा लग गया, सतयुग में कांटा लगेगा तो कांटा कैसे गायब हो गया, आज आपने एक छिपकली देख ली, सतयुग में होगी, कहां गई वो, किसने सफाई कर दी, है बाबा रोज कहता है, आज भी कहा है कल भी कहा है कि वहां अंधे लंगड़े लूले नहीं होते, आयु 150 वर्ष एवरेज होती है, हैं? कोई हद नहीं होती, कोई पासपोर्ट नहीं होता, क्या दुनिया है, कुछ दिन पहले कहा था कि एक आंसू भी नहीं गिरता, पूरे स्वर्ग में एक आंसू भी नहीं गिरता। आजकल के लोग देखो ऐसा भी हो सकता है कि आंसू ही ना गिरे। इसलिए वह अगर वह दुनिया बाबा ला रहा है हमारा पिता, तो हम तो फिर भी क्लास करते हैं, धारणा किए हुए हैं, घर को कर्म योगी रखा हुआ है, तो हम क्यों नहीं आएंगे? केवल हम ढीले हो जाते हैं, स्मृति निकल जाती है। स्मृति निकलने से व्यक्ति की उत्साह घट जाता है। अब खून तो हम सब में है, अभी आप डॉक्टर से टेस्ट कराएं और डॉक्टर कहे जी आपका खून, मैंने पिछले 2 साल में जितने खून टेस्ट किए हैं सबसे प्योर खून आपका है, आपका क्या हाल होगा? फिर है आप वही, आपकी चाल ढाल बदल जाएगी कि नहीं? आप चलेंगे वाह मैं अच्छा, औरों को उनको पता भी नहीं कि आप खून टेस्ट करा के आए हैं, पर आपको होगा वाह है, क्यों के स्मृति है। इसी प्रकार से हमारी स्मृतियां तो बाबा रोज बताता है कि भाई मेरे बच्चों है सबसे ऊंचा आपका, आदि भी ऊंचा अनादि भी ऊंचा, सारे कल्प में सबसे ऊंचे बाबा के खुद सिलेक्ट किए हुए बच्चे हैं, अपने को विस्मृति कर ली साधारण है, पुराने मोहल्ले में रहते हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरा पड़ोसी है, कलयुग की स्मृति में आ गए तो बेड़ा खत्म। इसलिए बाबा कहता है कि आजकल बाबा ने क्या किया है कि जहां आप होंगे वैसी स्मृति तो होगी। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, आपकी स्मृति में फर्क है ना, जो आज के दिन आप अपने लौकिक में होते तो और स्मृति होती, किसी दफ्तर में बैठे होते जो भी था। तो हम ये कहते हैं कि अपनी स्मृति को, हमारी ही स्मृति है, ऐसी जगह क्यों ना टकाएं जो कि आपको खुशी प्रदान करे, जो आपका उमंग उत्साह बढ़ाए, और ये आपके हाथ में है। अगर आप यहीं बैठे बैठे अपनी स्मृति में कोई उदास करने वाली सीन सामने ले आओ तो आप क्या देखोगे? कि आप उदास हो जाओगे, बाकी सब बैठे हैं आप उदास हो जाओगे। और अगर अपनी स्मृति में बहुत उत्साह बढ़ाने वाली चीज ले आओ तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा। तो आपको क्या जरूरत है कि आप खास उदासी वाली चीजें याद करो, उदास हो फिर कोई पूछे क्या है भाई, कहां खोए हुए हो, है ना? इसलिए आपके हाथ में है। तो सारे का एक सार निकलता है स्मृति, और बाबा रोज हमारी स्मृति को टॉप पर ले जाते हैं। इसलिए स्मृति के भी 2 भाग हैं, एक है लौकिक एक है अलौकिक। अब आप देख लीजिए सारे दिन में जितना समय आपको अलौकिक स्मृति रहेगी, तो जब से हम ब्रह्मा कुमार बने तो हमारा नाम से पहले क्या लग गया? लौकिक नाम से पहले लग गया ब्रह्मा कुमार। ठीक है, ब्रह्मा कुमार मैंने अलौकिक, ठीक है ना, तो परलौकिक है ना लौकिक, बीच में लौकिक से निकलकर परलौकिक जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार में यात्री, उसका काम क्या है? लौकिक को समेटना और परलौकिक की तरफ प्रस्थान करना। अच्छा, हैं हम लौकिक में, ये देह भी लौकिक है, देह के संबंध भी लौकिक हैं, निवास स्थान भी लौकिक है। अब लौकिक में अलौकिक, अगर हम ब्रह्मा कुमार नाम को ही याद रखें तो हम हो गए अलौकिक। तो अलौकिक की हर चीज अलौकिक है। बहन जी ने कहा है आपका टॉपिक है सर्व संबंध का रस बाबा से लेना, संबंध तो देहधारियों के होते हैं, हर चीज हमारी बाप दादा से कनेक्टेड है। अलौकिक मींस कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार और आकार देहधारी है, हम भी देहधारी हैं, इसलिए देहधारी के द्वारा निराकार से कनेक्शन करना आसान है। तो हमें एक स्मृति स्मृति के दो भाग, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में आना है लेकिन अलौकिक बन के आना है, जिसको हम कहते हैं परिवृत्ति। कि परिवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि उसमें घुस जाना है, बल्कि उसमें जितना हम अंदर हैं उसमें वृत्ति परे करके रहना है। होगी परिवृत्ति, तो परिवृत्ति होगी अलौकिक बनने से। तो अब आप देखेंगे होता क्या है, क्योंकि हमें 63 जन्म से बॉडी में रहने का अभ्यास है, बॉडी के संबंधियों में रहने का अभ्यास है, और दुखों का भी अभ्यास हो गया। जो दुख है ना, हम दुखों को छोड़ना भी चाहें तो दुख हमें नहीं छोड़ते। होता है ना, मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आप लाख कोशिश कर लो मैं नष्टो मोहा हो जाऊं, हो भी जाओ, लेकिन वो आपसे भी तो नष्टो मोहा हो, वो तो आपको पकड़ लेंगे, ठहरो जाते कहां हो। इसलिए हमें, आप देखेंगे कि लौकिक पने का जो इजी है, दुख को सहन करना, दुख को आना हम रेडी हैं, और शांति में रहना मुश्किल है। अब बताओ, शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा धाम है, शांति हमारा लक्ष्य है। सुबह बहन जी ने कहा सब मौन में रहना, कितनी तकलीफ महसूस हो रही है, मौन में रहे, कुछ बोले ही नहीं। अच्छा, क्यों? बोलने का अभ्यास है, इस हाथ को उठाने का अभ्यास है, फटाफट उठा लेते हैं, रखने का अभ्यास है, वो अलौकिक का अभ्यास कम है। तो बाबा ये कहता है कि जिस तरफ जाना है उसका अभ्यास बढ़ाना है। दो पलड़े हैं, अभी ये पलड़ा डाउन है, इसका माल इसमें डालते जाना। ये जो सफल करने को भी कहते हैं, हल्का होने को भी कहते हैं, किस लिए कहते हैं? बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ किस लिए रचा? एक कुंड बना दिया कि जो बोझ फालतू चीज होती है तुम्हें तंग करते यहां डाल जाओ, ताकि तुम तो हल्के हो जाओ। इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो बाबा ने बहुत युक्ति से, ऐसा कोई दुनिया में कारीगर नहीं है, आप सोचो, जो इस प्रकार की युक्ति रचे कि कोई किसी भी परिस्थिति में हो, किसी के 20 बच्चे हो, किसी का कोई बच्चा ही ना हो, किसी के 6 लड़कियां हो, किसी के 6 लड़के हो, कुछ भी हो, बाबा कहता है सबके लिए मैंने ऐसी युक्ति बनाई है चुटकी से कि सारे मुक्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा आत्मा मेल है या फीमेल है, बताओ, क्योंकि आत्मा मेल का रूप भी धारण करती, फीमेल का भी करती है। हमने कहा जो प्रवृत्ति वाले होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके जो संतान होती है वो मेल ही मेल होती है या फीमेल ही फीमेल होती है, दोनों तरह की होती है। कईयों के मेल ज्यादा होती है, कईयों के फीमेल ज्यादा होती है, कईयों के सारी ही फीमेल हो जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, आत्मा में मेल फीमेल का है? और आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका आधा ब्रेन फीमेल का है, आधा ब्रेन मेल का है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे क्या पता लगता है कि हम तो चतुर्भुज हैं। लेकिन हम विष्णु का मिसाल दें, उसमें भी मेल को आगे किया हुआ है, लक्ष्मी को पीछे किया हुआ, वो भी किसी पुरुष ने बनाया हुआ लगता है। बाबा कहता है महालक्ष्मी को छुपा दिया है, उसको आगे कर दिया है, मेल प्रधान दुनिया है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हम किसी भी रूप में है। अगर आपने अपने आप को अदर कुमार भी समझ लिया तो बहुत घाटे में रहोगे। अदर कुमार का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना? आप भी 1/2, आपकी जुगल भी 1/2। अच्छा, अब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता भाई? किया तो आपने जरब दिया कि बढ़ाएं, हैं? बना क्या? 1/4, यानी आधे को आधे से जोड़ जरब दिया तो चौथा रह गया। कितने घाटे का सौदा है, नहीं तो हम भी अदर कुमार बन जाते, कुछ सोचा होगा। अच्छा, आप सोचिए, इसलिए अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट समझेंगे कि हैं हम अदर कुमार, लेकिन हम कंप्लीट हैं बाय इट सेल्फ, हैं, और संबंध में हैं लेकिन निराधार हैं और दूसरे व्यक्ति को भी निराधार बनाना है तो आप डबल हो जाओगे, एक और एक 11 भी होता है। इस वास्ते ये आपके ऊपर है। सतयुग में क्या है? संबंध है, और यहां क्या है? बंधन है। तो यहां बाबा कहता है तुम्हारा तो सारा खेल ही वंडरफुल है, 21 जन्म तुम्हें लौकिक बाप का वर्षा ही नहीं मिलता। बताओ 21 जन्म, वैसे कहते हैं लौकिक बाप लौकिक बच्चे को वर्षा देता है। बहन जी कहते हैं संबंध बताओ, पिता का संबंध बताऊं, अब पिता से तो वर्षा मिलता है और आपका पिता तो अजीब तरह का है कि वो एक ही बारी इतना वर्षा दे देता है, इतना वर्षा दे देता है कि 21 जन्म आपको वर्षा ही नहीं मिलता लौकिक बाप से, पर लौकिक का ही वर्षा मिलता रहता। अब ऐसे पिता का संबंध कितना जबरदस्त हो गया। इसलिए हमें कंप्लीट रहना है, प्रवृत्ति में रहना है। दो तीन दिन पहले आया था कि भावना और स्नेह की रस्सी से बच्चों ने बांध लिया है भगवान को, और जैसे वो कृष्ण जी को बांध देते थे ना उसकी माँ, तो बच्चों ने कल्प वृक्ष से नीचे बाबा को बांध दिया है। अब बाबा तो रस्सी छुड़वा लेता है, फटाफट छुड़वा के दोनों रस्सियां वापस कर दी और कहा ये और ले लो नीचे तखत और झूला बना के झूलते रहो, है दिल तखत और भावना और स्नेह से झूलते रहो। फिर कहा ये तो माताओं में संस्कार होता है स्नेह का, मुझे बड़ा ख्याल आया भाइयों का क्या होगा, है माताओं में स्नेह का संस्कार होता है, भाइयों में क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि बहनों माताओं को तो हो गया स्नेह और भावना, और भाइयों को भी तो कुछ है, तो भाइयों को हो गया सहयोग। अगर भाई सहयोग ना दें हैं, और भाई थोड़ी सी नम्रता के नम्रता से ना रखें तो गड़बड़, और सहयोगी और नम्र के दो रस्सियां भाई भी दे दें तो इनका भी झूला बन जाएगा, झूलते रहो कि भाई हम जो हैं सहयोगी हैं और हम नम्र स्वभाव में रहते हैं। तो मैंने ये देखा है कि इस ज्ञान में चैरिटी बिगिन एट होम, अगर आपने सचमुच इस ज्ञान का प्रैक्टिकल में मजा लेना है और इसको बहुत आनंदित रूप में रहना है तो अपने युगल से शुरू करिए। कैसे शुरू करेंगे आप? उसको युगल रूप तो देखिए नहीं, लेकिन उसको रिस्पेक्टफुली देखिए। एक आत्मा जिसको मैंने सम्मान देना है, स्नेह देना है, किस लिए देना है? कि मुझे सम्मान और स्नेह मिले, क्योंकि ज्ञान का फर्स्ट असूल यह है जो दोगे वो मिलेगा। खड़े हो जाओ कि मुझे मिले, ये दुनिया वालों का है, वो बेचारे धोखे में हैं, ले लूं फिर दूं ना। तो एक ट्रायल आप करिए कि लोग यही कहते हैं कि भाइयों के पास पैसा होता है। अब मान लो आप भट्टी में आए तो आपका सारा घर माताएं संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, बच्चों को भी भेजती हैं, सफाई भी करती हैं। मान लो माताएं भट्टी में आ जाएं तो आप खाना बनाओ, उसी तरह सफाई करो, झाड़ू लगाओ, बच्चों को भेजो। नहीं जी, कुछ प्रबंध करके जाओ, है ना? अब सोचो फर्क पड़ गया ना। इसलिए हम उसको उस रोल में देखते हैं। हम भी कर सकते हैं इजीली। अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि वो आत्मा समझेगी कि बाबा ने, जैसे बाबा मुझे रखता है ऐसे ये बच्चे रखते हैं। तो हम कहते हैं, कल तो हमने यहां तक कहा था कि आश्रम इतने बड़े खोलने में आपने सहयोग दिया, आप यज्ञ पिता हैं, यज्ञ माता भी उनको आपने बनाया। बाबा तो कहता घर घर सेंटर बन जाए। सेंटरों की तो फिर भी 8000 गिनती है, अगर घर घर सेंटर बन जाएगा तो कितनी गिनती हो जाएगी? लाखों में हो जाएगी कि नहीं? और घर सेंटर बनाने का कोई बोर्ड लगाने की बात नहीं है। कोई गलती से भी आपके घर आ जाए, डाकिया चिट्ठी देने वाला भी आ जाए, वो देखे कि कमाल है, कैसे बोल रहे हैं, दो ही लफ्ज बोले हैं, कितने प्यार से बोले हैं, कितने, जैसे देवताओं का घर होता है। और दूसरे के घर में जाएगा तो और तरह बोलेगा, ए डाकिया आया चिट्ठी ले आ। अच्छा, यहां बड़ा रिस्पेक्टफुली है, फर्क पड़ गया। उसको सारा 7 दिन का कोर्स वहीं हो जाएगा। इस वास्ते हम कहते हैं कि कि हम अपने घर से शुरू करें कि जैसे ये देवताओं का घर है मेरा, और सतयुग होगा जब होगा, ये मेरा घर है, इसमें हर एक ऐसे ढंग से बच्चा बात करे तो ऐसे करे। किसी ने लिखा भी है चिड़चिड़ापन। अब ये चिड़चिड़ापन के पीछे क्या है, आप देखेंगे, चाहे चिड़चिड़ापन है, चाहे मूड है, चाहे गुप्त ढंग से उसके पीछे होता है बहुत सूक्ष्म ढंग का रोब। बाबा कहता है रुहाब रखो, रोब नहीं रखो, यानी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ईगो नहीं रखो। अब ये ईगो इतनी खराब चीज है, ईगो किसी की रिस्पेक्ट करने नहीं देता। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने अपना ईगो हमने खत्म करना है तो कहां से शुरू करेंगे। मैं कहूं मेरे में ईगो ही नहीं है, क्या पता है कि नहीं है, है ना, कोई टेस्ट होना चाहिए ना उसका। तो ईगो ना होने का टेस्ट ये है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकें, एक नंबर, और दूसरे की रिस्पेक्ट होते सहन कर सके, दो नंबर। आप देखिए कि जिससे भी आपकी अनबन हो या आपका कोई और हो, अगर उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है, आपके दिल पर क्या गुजर रही है, आपको अच्छा लग रहा है या आपके अंदर चल रहा है, इसकी रिस्पेक्ट, ये हो रहा है। तो अगर दूसरे की रिस्पेक्ट होने पर आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है तो समझ लो ईगो है। तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे, उड़ाएंगे कैसे उसको। इसलिए आपके जो साथ रहते हैं आप उसको रिस्पेक्ट देना सीखिए, उसमें क्या फायदा, आपका ईगो खत्म होगा और वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, उसका भी ईगो खत्म होगा। तो घर में और कुछ भी नहीं होता, ईगो ही होता है। कहते हैं एक परिवार था, एक बच्चा, माता पिता, रात को खीर बनाई तो माता से गलती से बच्चे की कटोरी में ज्यादा खीर पड़ गई और पति के कम। कलजुगी परिवार फटाफट बोला, पति तेरा मैं हूं या ये है। अच्छा, और बच्चा कम नहीं था, कहता ये मेरी मां है या तेरी मां है। अच्छा, वो बोली ये मेरा बेटा ये है या तू है। बोलो, हो गया काम साफ। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है सारे खेल कि सारे दिन में क्या करते होंगे, आप सोचो। इसलिए प्यार जो होता है वो रिस्पेक्ट के रूप में जाहिर होता है। तो रिस्पेक्ट में छोटा बड़ा आ गया, ये कम है मैं ज्यादा हूं आ गया, ये आयु में छोटा है मैं ज्यादा हूं, तो आत्मा कहां गई। हम कहते हैं मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, अज्ञानी भी कह देते हैं ये सब भगवान के दिए हुए हैं जी, आपके ही हैं, आप मेरे जैसा घर चले कहते हैं आपके ही हैं बच्चे, मुझे कह देते हैं बताओ। अच्छा, अब ये सब जो है ऊपर ऊपर से कहते हैं, अगर कोई ले लिया किसी ने पर तो कहेंगे हाय मेरा बच्चा ले लिया। इसलिए बाबा कहता है कि ट्रायल करिए, अपने ज्ञान का पूरा टेस्ट आप अपने परिवार में कर सकते हैं, जहां आप रहते हैं वहां कर सकते हैं। बाबा ने कह रखा है संतुष्टता, टेस्ट क्या है इसका, आप संतुष्ट रहते हैं दिल से और वो संतुष्ट रहते हैं आपसे दिल से, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो ज्ञानी परिवार में जाओगे सब हंसते हुए बाहर निकलेंगे, कई तो ज्ञानी उनको फोटो देखकर कहते हैं हमसे तो ये अच्छे हैं, ये तो हंस रहे हैं, ये नहीं पता कि टेम्परेरी हंस रहे हैं, सारा टाइम रोते रहते हैं। परंतु आप देखिए कि हम सचमुच हर वक्त अंदर से मुस्कुराते हैं, तो एक बीमारी हमारी खतरनाक है ईगो, और ईगो बॉडी कॉन्शियस से आता है, बॉडी से सब संबंधित चीजों से आता है। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं, ये हूं, और इसका मतलब दूसरे कम है मेरे से। अच्छा, फिर ईगो वाले को क्या होता है, अपने से कोई सवा शेर मिल गया तो नेगेटिव ईगो भी होता है, जिसको नानक नीच कहा जाता है। फिर व्यक्ति कहता है मेरे से नहीं होता, उससे करा लो, वो और तरह से उसकी भाषा हो जाती है। तो कलयुगी लोगों में बॉडी कॉन्शियस के कारण से छोटा बड़ा ऊंचा नीचा बना हुआ है, और बाबा के परिवार में सोल कॉन्शियस के कारण से बराबरी है। तो अब आप सोचो कि बराबरी हम दिल की चाह, अगर किसी के अंदर दिल की बराबरी आ जाए उसको कभी क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, इसको ऐसा क्यों, इसको ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों नहीं। वो संसारिक है और उसके लिए आपको ईगो को जीतना पड़ेगा। तो ईगो को जीतने का लाभ क्या है? ईगो को जीतने का लाभ ये है, आपको स्वमान में रहना सचमुच आ जाएगा। और अगर ईगो रहेगा, ऊपर से आप स्वमान जाहिर करेंगे और साधनों से, लेकिन अंदर से स्वमान नहीं होगा। ईगो वाला व्यक्ति स्वमान का भूखा रहता है, कि उसके अंदर खाली होता है। इस वास्ते स्वमान धारी बनने के लिए सदा स्वमान में स्थित रहने वाला, सदा भरपूर, जिसको मान की इच्छा ही ना हो, लोग उसको स्वयं ही मान दे जाएं, जैसे देवता हैं उनकी मूर्तियों को भी लोग फूल चढ़ा जाते हैं क्योंकि उनमें ईगो नहीं था। तो ईगो छोड़ने का तरीका क्या है? नम्रता, दादी जी ने कल कहा था, ह्यूमिलिटी। अगर हम नम्र और निर्माण रहें तो ईगो गया। तो आप ये ट्राई करके देखिए, फिर आप देखिए कि आपके संबंध जो हैं कितने खुशनुमा हो जाते हैं, और आपके अंदर स्वमान आपका आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा हर वक्त। अगर आपने सबूत देखना हो, छोटी कन्या को देख लो, या कई कुमारियां हैं घर में भी देख लो, छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को, क्योंकि बड़े छोटे की पहचान नहीं होती, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, फलाना हूं, कितना नाचता रहता। छोटे बच्चे को कहो जो गेट खोल के आओ, वो सीधा गेट खोलने नहीं जाएगा, नाचता टापता जाएगा, गेट के ऊपर बैठेगा, हंसेगा, फिर गेट खोलेगा, क्यों? उसको खुशी है। तो बड़े होके खुशी कहां जाती है? ईगो आ जाता है, मैं गेट खोलूं, मेरा काम गेट खोलना है, खोलता हूं, ऐसे। तो फर्क पड़ गया। छोटे बच्चे आप देखो बस में जा रहे होते हैं स्कूल, आपको टाटा करते जाते हैं, बड़े जा रहे हो साथ वाली कार में, आप उनको देखना शुरू कर दो, आपको घूरना शुरू कर देंगे, क्या बात है भाई, क्यों देख रहा है? ईगो है ना। इसलिए ज्ञान में सबसे नंबर वन बैरियर जो हमारे जीवन में आता है वो ईगो है। और ईगो आपको कहेगा कि ज्यादा पैसा देता है इसलिए इसका ज्यादा मान है, ये पढ़ा लिखा है इसका ज्यादा, मेरा कुछ नहीं, ये सब बॉडी कॉन्शियस और ईगो से है। आप बताइए आपको किस में फायदा है, करके देखिए। जिन्होंने लिखा है कि हम जीवन में ज्ञान को ढालना चाहते हैं, वो सादगी, सफाई, जिसको बाबा कहता है सादगी, जो व्यक्ति सादा नहीं रह सकता, वो समझता है कि इस ये चाहिए वो चाहिए, इससे ही मेरी वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कपड़ों से है, जूतों से है, उसकी वैल्यू इंसानियत से नहीं है। इसलिए इंसानियत का पहला निशानी है दूसरे को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, और उसमें हमें फायदा ही फायदा है, हमें रिस्पेक्ट मिलता रहेगा। ठीक है? अच्छा, हाँ जी। अच्छा, दूसरी जो है मोह, ये परिवारों में बहुत होता है, माताओं को बहुत होता है। आपको अनुभव होगा कि मोह अगर घर में है, चाहे माता कोई है तो सही घर में, एक भूत घर में घुसा हुआ है, किसी के अंदर भी घुसा हुआ है तो भूत ही, वो आपको भी परेशान करेगा। जो घर के बाकी लोग होंगे, एक में भूत होगा तो परेशान तो करेगा ना। इसलिए आप मोह की भी निशानी देखिए। बाबा कहता है मोह जरा मीठा विकार है, मोह छोटा सा बच्चा मिल जाए। यहां कईयों ने लिखा है कि साहब हम बुजुर्ग हो गए, हमारे को बच्चे खाना खिलाते हैं और वो योग युक्त खाना नहीं मिलता, क्या करें। मैं तो उनको इनवाइट करने लगा था, मेरे घर आ जाया करो, शायद पता नहीं कहां रहते हैं बेचारे। लेकिन आप गौर से देखिए कि नई बहू आई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नरम है, चलो इसके हाथ का खा लेते हैं परौठा, कौन बनाएगा। बाबा कहता ना भोग लगा के खा लो, ठीक है। ये किसने कर दिया भाई तुम्हें, है اس وقت تمہارا اصول کہاں گیا تھا جب پہلا پروٹھا کھایا تھا؟ اب کہتے ہیں شانہ شدھ نہیں ملتا، اب تو لمبی بات ہو گئی۔ اچھا، اسی پرکار سے چھوٹا بچہ گود میں اٹھا، واہ کتنا ہے، ارے سانپ کا بچہ چھوٹا ہو رنگ دارو ہے تو سانپ کا ہی بچہ۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے، اپنے اندر نفرت پیدا کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم آپ کو کچھ غلط بات سنیاسیوں والی بتا رہے ہیں۔ کلیوگ میں جتنے رشتے دار ہیں سب کرم بندھن کے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، انبھو کر کے دیکھ لو۔ اگر ٹیسٹ کہانیاں بھی ہیں شاستروں میں کہ فلانا ڈاکو تھا، پاپ کر کے کماتا تھا، گھر والوں سے پوچھا جب سزا ملے گی تم شیئر کرو گے، وہ بولے ہم کائے کو کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، ایک آدمی کا سانس روک دیا گیا تھا اس کے، تو سمجھے لوگ سمجھے مر گیا ہے، پھر اس کے گھر والے جو بول رہے تھے اس نے سنا تو اس کا سارا منہ ٹوٹ گیا۔ یہ کہانی ہے، فیکٹ یہ ہے کہ سارے کلیوگ کے رشتے دار بندھن کے ہیں، آپ ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اب بندھن کے ہم یہ نہیں کہتے ان سے دشمنی کرو، من سے بلانا ہے، تو من سے بلانے کا یہ ہے، اگر آپ نے کسی میں موہ رکھا یا آپ نے کسی کو اپنے میں موہ رکھنے دیا تو آپ کی آزادی ختم۔ فریڈم جس کو کہتے ہیں، آزادی، سوتنترتا، دنیا دیش کی سوتنترتا کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ بابا نے بھی کہا ہے کہ تم جو ہے شہید ہو جاؤ، ہے کہ نہیں، بابا کے لیے۔ تو اگر ہم اپنی سوتنترتا کو کھونا چاہتے ہیں، بھلے موہ میں رہیے۔ اتنا اسٹرانگ بابا نے کہا وناش کا وقت آئے گا، آپ کو اتنا دل پکا ہونا چاہیے، اتنا پکا ہونا چاہیے، اپنا بھی آدھا حصہ پھٹ رہا ہے، اس سے بھی آپ ڈٹیچ ہو کر کے جی سکیں، دیکھ سکیں سارے سین کو، نہیں تو ہردے ودیرن ہوگا۔ کئی لوگ اپنی جان بچا کے بھی آ جاتے ہیں، منہ کے کارن اندر جائیں گے پھر چھت گر جائے گی تو مر جائیں گے۔ وہ بھی چھوڑو، ہم مرنے مرنے کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن موہ آپ کی سوتنترتا کو لے جائے گا۔ بابا کی مرلیوں میں آتا ہے کہ جس میں موہ ہوتا ہے اس کا درد آپ کو اپنا درد لگتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے تو طوطے کی ٹانگ مروڑو، جن تو بڑا بھاری طاقتور ہوتا ہے، طوطے کی ٹانگ مروڑو جن کو درد ہوتا ہے۔ اسی پرکار سے جس میں آپ کا موہ ہوگا وہ آپ کو بندھن میں باندھ دے گا۔ آپ کا سمے آپ کے ہاتھ سے گیا، آپ کی آزادی آپ کے ہاتھ سے گئی، آپ کی ٹوٹل فریڈم گئی۔ اگر موہ کیا، اڑنے والا پنچھی پنجرے میں آ جائے گا، آپ کی مرضی ہے۔ اور موہ کو جیتنے کا طریقہ بابا نے بتایا ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ کیوں جی، آپ تو پرورتی میں رہتے ہو، کیا ہے؟ ہاں، انا سکتی۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اندر موہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ڈیوٹی بجانی پڑتی ہے نا، یہ کرنا پڑتا ہے نا۔ ایک بھائی آیا اپنی کنیا کو سرنڈر کرانے بابا کے پاس، میں خود تھا وہاں، بولا بابا میں نے اپنی کنیا سرنڈر کرنی۔ ان دنوں ٹیچر تھوڑے ہوتے تھے، لیکن بابا میری ایک شرط ہے۔ بابا سن رہا ہے، بابا میں چاہتا ہوں اس کو نا میرے ہی شہر میں کہیں رکھ دیں، کسی سینٹر میں، یہ میری شرط ہے۔ اب بتاؤ تم نے سرنڈر کیا یا کیا کیا، یا اپنی ذمہ واری ٹالی پہ، شادی پہ پیسہ خرچنا پڑے گا، چلو یہیں رکھ دو، رہے میری نظر میں۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بابا نہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بیچارے کی اتنی طاقت ہے۔ تو کہنے کا بھاو یہ، دل سے چھوڑنا ہے۔ ویسے آپ اپنی ڈیوٹی ضرورت سے زیادہ کریے، بابا مما نے بچوں کی اتنی سیوا کی ہوئی ہے، الوکک بابا مما نے، کہنے کی بات نہیں، بیماریاں میں بھی ان کی پورا دھیان رکھا ہوا، لیکن ہم موہ رکھ کے پھر کہیں موہ نہیں ہے۔ جیسے خربوجہ ہوتا ہے، اوپر سے لائنیں ہوتی ہیں الگ الگ، کہ بالکل الگ ہے جی دیکھو، اور اندر ہوتا ہے گھی شکر، ہے نا، ایسا نہیں بننا ہے، سنترے کی طرح بننا ہے، اوپر سے ہے ایک، ہر پھاڑی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی دھاگوں سے بندھی ہوئی لیکن انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس لیے موہ میں نے جیتنا، میں نے اپنی آزادی کو واپس لینا، میں انڈیپینڈنٹ آتما ہوں۔ اب آ جاؤ لوپ پر۔ یہ چیزیں ہم کو یوگ سے، بابا سے اور الوکتا سے پرے رکھ کے دھرتی پر رکھتی ہیں۔ لوگ वैसे हम कहते हैं दुनिया विनाश होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, हर चीज को मरा हुआ देखो। अंदर से लोभ रखते हैं कि बाबा ज्यादा कमाएंगे ना तो तुम्हारे यज्ञ में ज्यादा देंगे। वाह क्या शानदार, ये तो लॉटरी भी डाले आते हैं कि लॉटरी निकलेगी ना बाबा यज्ञ में दे देंगे। बाबा ने कब कहा तुम ऐसे यज्ञ में दो है? कहने का भाव यह है कि लोभ है। अब लोभी व्यक्ति जो होता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, कंटेंटेड नहीं रह सकता। उसका लोभ, लोभ एक बीमारी है, उसका हर सब कुछ है परंतु लोभ साथ है तो लोभ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आपको कोई 10 करोड़ दे दे और आप में अंदर लोभ है, आप कहेंगे अब 11 हो जाए, 12 हो जाए। आपको 500 है, लोभ है, आप कहेंगे 600 हो जाए। लोभ का कोई अंत नहीं है, ये एक बीमारी है। ये गरीब में भी होती है, अमीर में भी, एक रोग है। और इसका नुकसान क्या है, आप सदा असंतुष्ट रहेंगे। और अगर आप लोभ छोड़ दें कि बाबा आइए आइए की बजाय जाइए जाइए करें, कोई चीज ना जाइए, वे हम तो देवताओं की संतान है, देने वाले हैं, देवता थोड़ी है, तो आप देखेंगे आप सदा भरपूर रहेंगे। भरपूर रहने का, सदा संतुष्ट रहने का एक चाबी है, लोभ को छोड़ दो। ये बाबा ने सेंटर क्यों बनाए हैं, आपको क्यों कहा है कि आपके घर में भी जो कुछ है बाबा का है, लोभ छूट जाए। चलाते तो उसको आप ही हैं। मैंने पहली बार जब मैंने नौकरी की, मैंने अपनी तनख्वाह ब्रह्मा बाबा को रजिस्ट्री करा के भेजी, बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दी कि बच्चे तुमको किसने कहा है कि यहां भेजो। मैंने कहा बाबा आपने कहा था नौकरी करो, ईमानदारी की कमाई होगी, बाबा सफल करेगा जिसकी मर्जी करे। नहीं, बाबा ने कहा अपने पास रखो, बाबा का समझ के यूज करो। अब वो ज्यादा उसमें जिम्मेवारी है कि आपके हाथ में है, फिर भी आप बाबा का समझ के यूज करें तो उसमें आपका ईमानदार, वफादार, फरमाबरदार सब टेस्ट हो जाएगा। आपने दे दिया फिर आपका ईमानदार वफादार कहा, वो तो बाबा और को यूज करेगा। इसलिए ये जो है, अगर आपने बाबा का समझा, लोभ नहीं रखा, कभी ये नहीं सोचा ज्यादा हो जाए तो बाबा को नहीं चाहिए। बाबा कहता है मैं तो आपका भावना देखता हूं। इसलिए अगर आपने जिंदगी में संतुष्ट रहना है, हर तरह से सागर की तरह भरपूर, लोभ छोड़ दीजिए, संतुष्टता आपके हाथ में आ जाएगी और भरपूर रहेंगे। अब आ जाइए क्रोध पर। आप जानते ही हैं क्रोध एक आग है, कहते हैं क्रोधी के घड़े भी सूख जाते हैं पानी के, और क्रोध अशांति तो पैदा करता ही है। सबसे बड़ा नुकसान जो क्रोध करता है वो थकाता है, थकावट देता है। अगर किसी को थकावट होती है शारीरिक या मानसिक, समझ लो उसके अंदर क्रोध है। क्रोध के बहुत रूप हैं, मूड ऑफ करना, चिड़चिड़ापन, अकेलेपन की महसूसता करना, कभी बहुत खाना कभी नहीं खाना, अजीब तरह की उसकी हालत होती है। दिमाग उसका क्रोधी का जो है ना, नेगेटिविटी से भरा होता है और वो ठीक तरह सोच भी नहीं सकता, अपना भी नुकसान करने को तैयार हो जाता है। तो क्रोध जलाने वाली चीज है। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं ब्रेन के सेल जल जाते हैं, आयु छोटी हो जाती है, व्यक्ति मूडी हो जाता है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप क्रोध को जीत लें तो क्रोध वही अग्नि आपको आध्यात्मिक रूप में शक्ति का रूप धारण करेगी, जिसको हम कहते हैं उमंग और उत्साह। ये क्रोध का जीता हुआ व्यक्ति उमंग और उत्साह से भरा रहेगा। अगर आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है, लोग कहते हैं दधीची ऋषि, सारा टाइम 14 घंटे काम करते थे, कभी थकते नहीं थे, इतनी उनकी आयु थी। जिंदा में जानकी दादी जी को देख लीजिए कि आम उम्र वाले थक जाते हैं, वो हर वक्त प्रफुल्लित रहते हैं। कारण क्या है? क्रोध नहीं है, मन में छुपा हुआ भी क्रोध नहीं है। क्रोध का ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्रोध के रूप हैं। तो क्रोध को जीतने वाला अथक हो जाता है, उमंग और उत्साह उसके अंदर ऐसे पेट्रोल की तरह भर जाता है, दिन रात उससे जो मर्जी करा लो फिर फ्रेश रहेगा। अब आपको क्या मंजूर है? आपने देखा होगा गुस्सा करने के बाद पानी लाना है, एक घंटा पड़े रहेंगे ऐसे, अधमरा सांप हो जाता है जैसे, क्या फायदा। जब कहता ही है बाबा क्रोध एक खतरनाक चीज है। अब प्रश्न ये है, क्रोध को जीतने का फार्मूला क्या है? क्योंकि बाबा ने हमको एक एक शब्द के फार्मूले बताए हुए हैं। सिर्फ अटेंशन देने से भगवान को क्रोध आता है? शिव बाबा को क्रोध आता है? दादियों को क्रोध आता है? गुलजार दादी को क्रोध करके दिखाओ, करवा के कुछ भी करके देख लो है? पानी में आग नहीं लग सकती समुन्द्र में, तो क्रोध नहीं, क्यों? वो भी तो देखते हैं दुनिया में गड़बड़ हो रही है, ये व्यक्ति यज्ञ का नुकसान, सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं लगता। क्रोध क्यों नहीं आता? साधारण व्यक्ति को आ जाता है और कहते हैं मुझे सच से सख्त नफरत है, सच्चा जो आदमी नहीं होता ना उससे मेरे को बहुत, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आता है, यज्ञ में होकर झूठ बोल रहा है बस। फिर कहते हैं मुझे क्रोध नहीं आता, इसने दिलवा दिया। अच्छा है, ऐसा भी कहते हैं, कुछ भी है। बाबा कहते हैं कारण मत देखो, क्यों? क्रोध को जीतने का फार्मूला बताओ, एक शब्द और बहुत आसान। परमात्मा भी वही यूज करता है, हम उसके बच्चे हैं। वो है मर्सी, क्षमा। जिस पर क्रोध आए उसको माफ कर दो बस। लोग क्राइस्ट के लिए कहते हैं ना, क्राइस्ट को फांसी चढ़ा रहे थे, वो तो डिवाइन फादर था सिर्फ, कि कहता है इनको माफ कर दो भगवान, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आज नेल्सन मंडेला का मिसाल देते हैं, अभी वो 90 साल का हुआ है, 5-6 दिन पहले, इतने साल उसको जेल में रखा, जब वो निकला कहता है मैंने अपने दिल में उनके लिए कोई घृणा नहीं रखी हुई, इन्होंने मुझे जेल में रखा है। आजकल के लोग भी ऐसे हैं, आज लोग उसका मान करते हैं, और हमें तो अपना ही फायदा देखना है। अगर आपको किसी पर गलती करने के कारण क्रोध आए, गलती कर रहा है साफ साफ, एक जैसे पूर्वज होता ना बुजुर्ग, आज बहन जी ने भी मैसेज में कहा है अपने आप को पूर्वज समझो। बुजुर्ग का काम होता है बच्चा है, नादान है ना, हम कहते इसने गलती क्यों की, नादान है इसलिए की, अच्छा कर दी इसलिए उसको माफ कर दो। हम उसको नहीं माफ कर रहे, अपने आप को माफ कर रहे हैं। इसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप फॉरगिव करोगे तो फॉरगेट करोगे, माफ करोगे तो भूलोगे, माफ नहीं करोगे तो भूलोगे भी नहीं। एक व्यक्ति का गुस्सा किया हुआ उस पर 6 महीने असर रहता है, वो आपके साथ 6 महीने नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर सकता, 6 महीने बाद उसका असर खत्म होता है, बताओ क्या फायदा। तो अपनी ताकत को अशांत रहो, थके हुए रहो, तेरा लटका रहे उसका नाम सुनते ही एकदम ब्लड प्रेशर चेंज, चेहरा लाल, क्या फायदा। उसने गलती की हम क्यों दुखी हो रहे हैं, इसलिए क्षमा। ओके, अब आ जाओ काम विकार सबका सरदार। अच्छा, अब काम विकार आपको पता है कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस का, बॉडी कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा दुरुपयोग काम विकार से होता है, और देवताओं को पावन और उसके बाद वाले सबको पतित कहा इसलिए जाता है कि उनकी उत्पत्ति काम विकार से होती है। आज के सारे मनुष्य नरकवासी, चाहे वो सन्यासी हो, इसीलिए कि उनकी उत्पत्ति ही काम विकार से होती है। हाँ जी, अब आप सोचो कि हमको बाबा ने स्वर्ग में ले जाना है जहां काम विकार होता ही नहीं, तो काम विकार वाले को अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। पहली बात, बाबा कहता है मेरा ज्ञान तुमको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराता है, और काम विकार इंद्रियों का, जिसको साधु लोग कहते हैं अल्पकालिक क्षण भंगुर, उससे जो सुख तथा कथित प्राप्त होता है वो इंद्रियों का है, और उसके बाद उस व्यक्ति को इंद्रियों के सुख के सिवाय और कोई सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। और क्योंकि इंद्रियां धीरे 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 पुरानी हो जाती हैं, तो उनके मन में विकार रहते हैं, इंद्रियां पूरी नहीं कर सकती, चाहे वो जीभ का स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, आंखों का हो, कानों का हो, वो व्यक्ति और दुखी होता है। और अति इंद्रिय सुख बाबा कहता है उसमें आपको शरीर की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की शारीरिक साधनों की जरूरत नहीं है, वो इंद्रियों से परे है। और वो आत्मा का सुख है, आत्मा को कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप, वो आनंद है जिसका अपोजिट नहीं होता। इसलिए सुख का अपोजिट दुख लेना पड़ेगा, शांति का अपोजिट अशांति लेनी पड़ेगी, प्रेम का अपोजिट घृणा किसी की सहन करनी पड़ेगी, अगर किसी को उत्सत करेगा तो निंदा में भी आना पड़ेगा, तो उस्तत निंदा हानि लाभ जय पराजय में काम विकार वाला तो आता ही रहेगा। और अगर इसको आप जीतेंगे तो फिर क्या होगा, आप अति इंद्रिय सुख में रहेंगे, झूले में झूलते रहेंगे, आपको और चीज की जरूरत ही नहीं। और सोल कॉन्शियसनेस इसका एंटीडोट है। खुद को और सबको आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करने से आप इसको जीत सकते हैं। अब देखो जो बाबा कहता है ये विकार आपके पक्के दुश्मन है, इससे ये नुकसान है जो हम सब भुगतते रहे हैं, और इसको इस ढंग से छोड़ो, ये फायदे हैं आपके हाथ में, यही आपको सतयुग की फीलिंग आएगी कि मैं आत्मा इच्छा मात्र विद्या हूं, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं, मुझे हर किसी से मान शान की जरूरत नहीं, अपने आप आपको सम्मान मिल रहा है, सब चीज आपके साये की तरह है, आप अथक हैं और आपकी सारी सेवाएं दूसरों के लिए लग सकती हैं। तो वो अच्छा है या 90% अपना टाइम मनी एनर्जी इस घोटाले में लगाते रहो, 10% के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना देवताओं के लिए। अब बाबा कहता है कि फिर उसी बात पे आ जाते हैं, स्मृति। आप देखेंगे सारा ज्ञान सुनने के बाद इतना सिर्फ समझ में आता है हम संगम युग वाले हैं, संगम युग में कलयुग भी मिक्स है और हम भी मिक्स हैं। दुनिया में चले जाओ थोड़ा सा बाहर तो कलयुग और सतयुग मिक्स हो गया, कलयुग वाले मेजॉरिटी में हैं और माया का राज है। इस वक्त किसका राज है, माया तो हर जगह घुसी हुई है, सर्वव्यापी है, इतने रूप हैं उसके कि भगवान के घर में भी घुसी आई है, और भगवान शक्तिवान है, वो माया के राज में आकर उसने अपना कैंप लगा लिया है। हमारे सतयुग में माया नहीं आ सकती, माया के राज में भगवान आ गया है, हम सब बैठे हैं, अब दोनों का है खेल। इस वास्ते अपनी स्मृति को यहां से जितना हटाएंगे और जहां हमने लगानी है लगाएंगे उतना हमारा मामला आसान है। तो बाबा पहले कहता है सुदर्शन चक्करधारी बनो, हमने सुन लिया, लेकिन बाहर जाते ही दूसरे चक्करों में पड़ गए, वो चक्कर खड़ा है बाकी चक्कर घूम रहे हैं, क्या किया जाए। अच्छा फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, बाबा को पता है, तो बाबा ने कहा अच्छा मन की एक्सरसाइज करो, हैं एक्सरसाइज जो होती है उससे मन शक्तिशाली हो जाएगा, एक जगह टिक फंसेगा नहीं, कंट्रोल आएगा मन का, क्योंकि कंट्रोल ना होने से जहां नहीं चाहते वहां भी मन लगा रहता है, और जहां चाहते हैं वहां मुश्किल से लगाते हैं, फिर हटके वहां चले जाता है, क्या किया जाए। तो बाबा ने ये पांच धाम सिखाए कि भाई ठीक है यहां से तो उठाओ लंगर और यहां से चलो परम धाम में चले जाओ, आज भी कराया है अभ्यास, परम धाम से सूक्ष्म वतन में आ जाओ, फिर देखो हमारी कैसे पूजा हो रही, द्वापर में चले जाओ, फिर देवता रूप में आ जाओ, ब्राह्मण रूप में आ जाओ। अच्छा तो बाबा ने एक तरह से सुदर्शन चक्र का एक राउंड लगवा दिया, जैसे एक राजकुमार को सुबह सुबह उसके माता पिता आराम में बिठाकर बगीचे का राउंड लगा देते हैं, वो बैठा रहता है खुली हवा सैर कर आता है। फिर बाबा ने कहा दिन में भी लगा लिया करो, वो दिन में लगाते हैं, किसी का लगता है किसी का नहीं, कोई दो जगह लगा के फिर वापस आ जाता है, कोई एक जगह लगा के वापस आ जाता है। इसलिए हमने कल कहा था एक और भी तरीका है, और वो है स्पिरिचुअल मन का डांस, क्योंकि शक्ति प्राप्त करने के तीन ही तरीके होते हैं, ایک تو ایکسرسائز، اس میں لگتا ہے میں نے بہت محنت کی، پسینہ آ جاتا ہے، سانس بھول جاتا ہے، میں نے ایکسرسائز کی، تو خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کھیل، بھئی آپ نے ہاکی کھیل لیا، وہ کھیل لیا، کچھ بھی کھیل لیا، کھیل کا کھیل ہو گیا، دھیان کھیل میں گیا، ایکسرسائز بونس کے طور پہ مل گئی. اچھا ایک ہوتا ہے ڈانس، تو ڈانس میں کیا ہے وہ اور بھی اچھا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی مزہ آئے گا، دیکھنے والوں کی بھی مزہ آئے گا، اور کھیل میں آپ ایک دو کھیل سیکھیں گے، ڈانسر بھن بھن پرکار کے ڈانس بھی سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی مرضی ہے، من کا ڈانس ہے، تو من کو جس روپ میں لے جاؤ، جہاں آپ جاؤ گے من کو لے کر، ویسے ہی سنکلپ، ویسے ہی فیلنگ آپ کو آنی شروع ہو جائے گی. ابھی آپ اپنے من کو ایک گرم گرم ایک بھٹی کے پاس لے جاؤ تو آپ کو دیکھو کہ آپ کو سیک آنا شروع ہو جائے گا. اگر اپنے من کو آپ ایک ریفریجریٹر کے اندر لے جاؤ، فریزر کے، آپ کہیں گے بڑی ٹھنڈ ہے، ہے نا. روشنی میں لے جاؤ تو کہیں گے یہاں تو بھائی بہت روشنی ہے. اندھیرے میں لے جاؤ کہیں گے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو من کی کھیل ہے سارا اس، اور ہمارا سب کچھ ہمارے من میں ہی ہمارے ساتھ گھومتا ہے، چاہے ہمارا ایگو ہے، چاہے ہمارا اٹیچمنٹ ہے، چاہے کلجوگی لوکیکتا ہے یا الوکیکتا ہے، من میں ہی گھومتا ہے. تو من کو بابا کہتا ہے ڈانس کرواؤ. اب من کے ڈانس میں بہت طرح طرح کے ڈانس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے آسان ڈانس ہے اینجل ڈانس، فرشتے کا ڈانس، ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فرشتے بچے بن کے آتے ہیں، پر پور لگا کے آ کے سفید ڈریس میں یہاں ڈانس کرتے ہیں. رشین لوگ بھی فرشتہ بن کے کرتے ہیں، تو ہم بھی فرشتہ ڈانس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں فرشتے کی کوالیفیکیشن بھی پتا ہے اور اپنا سوکشم روپ بھی پتا ہے، فرشتوں کا لوک بھی پتا ہے، اور سنگم یگ پر ہی ہمیں یہ نالج ہے. تو آپ ذرا دو منٹ فرشتہ ڈانس کر کے دیکھو، مشکل تو نہیں ہے نا. اپنا بابا کہتا ہے فرشتے کے ہڈی ماس نہیں ہوتا، سوکشم چمکیلا ڈریس ہوتا ہے، مرلیاں بھی چلی ہوئی ہیں چمکیلی ڈریس پر، اپنے روشنی کا روپ دھارن کر کے سب کچھ اور چھوڑ کے فرشتے روپ میں اڑو. گیت بھی ہے، فرشتے ہیں ہم اب جا رہے ہیں اپنے گھر، تو اور نہ سے فرشتہ لوک جہاں ہمارا باپ دادا آج کل فرشتہ روپ میں ہی ہیں، گیٹ کھولنے کے لیے وہاں ویٹ کر رہے ہیں کتنے 40 برس سے کہ میں آؤ بچے آئے تو میں چلوں. تو کم سے کم بابا کو یہ تو کریں، بابا آج ہم آپ کو تسلی دینے آئے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہے نا. تو آپ کو دو منٹ فرشتہ روپ کا ڈانس کرو. دوسرا بھی بتا دیتا ہوں، جب فرشتہ روپ کا ڈانس کر لو تو پھر آپ جانتے ہیں رادھے کرشن لکشمی نرائن، رادھے کرشن کا ڈانس دیوی دیوتا روپ کا تو لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں، پرسدھ ہے. تو آپ دیوتا روپ کا بھی ڈانس کر لو. ایسے بابا کہتا تھا ستیگ میں جا کے ایکسرسائز کرو تو ستیگ آپ سامنے لاؤ گے کہ بہت اچھے بادل ہیں، شیر گائے کھڑے ہیں. آپ خود کو ہی چاہے رادھے کا روپ رکھ لو یا کرشن کا، جو آپ کا دل کرے دیوتا روپ اینڈ سرو گن سمپن، سب یہ سارے وکار بکور ختم، بالکل ستو پر دھان شریر، ستو پر دھان من، ستو پر دھان درشٹی ورتی، جو آپ ہی من ناچتا ہے نا. تو جو بالکل ایسے دھن بجتی ہے اس ڈانس میں، آپ کو میوزک آن کرنے کی ضرورت نہیں، سٹارٹ کہنے کی ضرورت نہیں، سٹاپ کہنے کی ضرورت نہیں، خاص جا کے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، فٹافٹ آپ اپنا روپ من سے دھارن کر سکتے ہیں. تو دو ڈانس تو کر لو، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیٹ اس ٹرائی. تو پہلے ہم اینجل روپ کا ڈانس کرتے ہیں، اور باپ دادا سے آپ جا کے مل کر روبرو ملاقات بھی کر سکتے ہیں. इसी प्रकार से आप भिन्न भिन्न अपने धाम में जाकर मन का माइंड डांस करें। एक नागा डांस भी होता है, दुनिया में तो उसका और अर्थ लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि परम धाम में जब आत्मा होती है तब तो उसको पता ही नहीं होता, कॉन्शियसनेस ही नहीं होता, लेकिन संगम पर आप कॉन्शियसली परम धाम में जा सकते हैं। तो आप अपने मन को परम धाम में ले जाकर और प्योर आत्म स्वरूप बनकर अपने ओरिजिनल जो बिल्कुल आपका अनादि स्वरूप है उसको धारण करके वहां पर भी आप रह सकते हैं। और वहां पर निराकार परमात्मा के आगे हैं, कहते हैं ना कृष्ण के आगे गोपियां डांस करती थी, तो निराकार परमात्मा जो गुणों के सागर हैं उसके आगे अपने गुण स्वरूप में सूक्ष्म शरीर के द्वारा निराकार रूप रच के भी आप नृत्य कर सकते हैं। और बाबा कहता है देखने वाली दुनिया को तो थोड़े से डांस देखने वाले होते हैं, हमें देखने वाली तो सारी दुनिया है। तो सारी दुनिया को स्टेज बना के आप जैसे ब्राह्मण हैं, बाबा कहता ब्राह्मणों को सारे विश्व को दान करना है, तो ब्राह्मण रूप से आप सारे विश्व को अपने सामने स्टेज रख के और जो कुछ आप उनको देना चाहते हैं वो आप एक अपने मन के नृत्य के रूप में नाचते नाचते उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से मन बहलाव करने के लिए भक्ति मार्ग में लोग भक्ति के नारद का डांस करते हैं, मीरा का करते हैं, मंदिरों में जाके करते हैं। आपके अपने ही मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, राधे कृष्ण जी का मंदिर है, उन मंदिरों के आगे जाकर भी आप अपने को ले जाकर मन का डांस कर सकते हैं कि हम द्वापर में कैसे थे और सतयुग में कैसे थे। तो मन बहलाव के लिए कोई न कोई तरीका करके यहां से इस जो संगम का पार्ट है लौकिक वाला मिक्स उससे थोड़ा दूर रहने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको माइंड कंट्रोल आएगा कि हम मन को जहां ले जाना चाहें वहां ले जा सकते हैं, जितना समय ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको अलौकिकता की स्मृति बढ़ेगी। अभी मेरा समय हो गया है, अभी आप शांति में बैठे, दादी जी आने वाले हैं, आपकी भट्टी है, इसलिए किसी भी रूप में आप पांचों धामों की यात्रा करते हुए योग अभ्यास करें। हाँ जी, एक प्रश्न ये है कि योग लगता नहीं, व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है, इसका कारण क्या है? ये एक प्रश्न सबके अनुभव का है कि योग में जो हम समय देते हैं उसमें पूरा पूरा समय हमारा बाबा से प्राप्ति का हो, ना कि व्यर्थ संकल्प इधर उधर चले जाएं, क्योंकि अगर ये होता रहता है तो निराशा होती है कि योग में बैठे लेकिन योग का टाइम पूरा हो गया, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, तो अगली बारी फिर और ढीला हो जाते हैं कि फिर योग में बैठे ही क्यों। तो पहली बात मैं ये बतानी चाहता हूं कि बहुत वर्ष पहले जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो मैंने ये प्रश्न बाबा से किया था। मैंने कहा बाबा मैं योग में बैठा, पूरा टाइम बैठा, योग लगा ही नहीं, थोड़ा सा लगा, तो फिर मेरे बैठने का फायदा ही क्या हुआ है? बाद में ऐसा लगता है कि ऐसे ही बैठे रहे, इससे तो मैं ना बैठूं, चलते फिरते योग लगा लूं। आप कहते हैं चलते फिरते लगा लो। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे बैठने के भी नंबर हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, बाबा ने कहा था बैठने के भी नंबर हैं, जब योग बैठने का टाइम है, योग का फिक्स है, तो उसमें बैठना ही है, और धीरे धीरे बैठते बैठते आपका लग जाएगा। और ये अगर सोचा आपने कि बैठने से नहीं लगता इसलिए बैठो ही नहीं, चलते फिरते का दूसरा पार्ट है, कर्म योग में योग याद का दूसरा पार्ट है, लेकिन बैठने का दूसरा पार्ट है। तो उसके बाद मैंने बैठना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा धीरे 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 वो बैठने के नंबर भी रहे, मेरे बैठने से दूसरे भी बैठे, उसका भी मुझे उनकी तरफ से आशीर्वाद मिला। ये तो कहेंगे कोई भी नहीं बैठता, ये भी नहीं बैठता, वो भी नहीं बैठता, तो वो अगर मेरे कारण नहीं बैठे तो उसका मेरे को उल्टा डिससर्विस भी हो जाता है। लेकिन मेन कारण ये है कि जिधर हमारा सारा टाइम ध्यान रहता है, 24 घंटे में जिस तरफ मन का ज्यादा ध्यान रहता है उस तरफ ही मन योग में जाता है। वास्तव में ये गीत इत्यादि भी इसीलिए लगाया जाता है कि मन जो है वो वहां से हट करके इस तरफ आ जाए। तो बेस्ट ये है कि एक है कर्म योग, तो कर्म योग में पहले हम कर्म शब्द यूज करते हैं फिर योग यूज करते हैं कि कर्म करते हुए योग में रहो, ठीक है, उसका फल आप देख रहे हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि योग में रहकर कर्म करना है, कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा ब्रह्म लोक से आते हैं, आप भी ये समझो रोज सवेरे कि हम ब्रह्म लोक से आए हैं और इस शरीर में आए हैं। बाबा लोन का शरीर लेते हैं, हमारा अपना है, हम इस शरीर में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन हमारा योग में रहकर सारा दिन कर्म करना है। तो अगर हम ये अटेंशन रखेंगे योग में रहकर सारा दिन कर्म करना है तो आपका ध्यान योग की तरफ ज्यादा रहेगा, कर्म की तरफ रहेगा कि कर्म करके फिर योग में हो जाना है। तो व्यर्थ संकल्पों को रोकने का एक तो ये तरीका है, दूसरा बिजी रहना। आप तो वैसे ही प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, आपको ये तो एडवांटेज है ही। कई बार प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं हमें ये काम है, धंधा है, गृहस्थ है, ये है, अगर काश के हमारे पास ये ना होता तो हम ज्यादा योग लगाते। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बिजी रहता है उसको माया भी छोड़ जाती है, बिजी देख कर ना कि बिजी है, जो खाली होता है उसके मन में बहुत संकल्प आते हैं। एक तो आपको हर वक्त ये तसल्ली रहनी चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार के काम में बिजी रहना, मैंने माया को दूर रखना, लेकिन उस काम में भी अगर हम खास अटेंशन रखेंगे, मुझे व्यर्थ संकल्प से अपने मन को हटाना है, योग में रखना है। जैसे बाबा जिन का भी मिसाल देते हैं, तो जिन था उसमें बहुत ताकत थी, वो कहता था मुझे काम दो, अगर काम ना दिया तो फिर मैं आपको मार डालूंगा। तो उसने सोचा ये तो जो काम देते हैं फटाफट करके आ जाता है, तो उन्होंने एक डंडा बनवा दिया कि जिन तू इस पे चढ़ जा, उतर जा, चढ़ता रहे उतरता रहे, जब काम होगा तुमको दे देंगे, फिर आके चढ़ता रहे उतरता रहे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि आप भी अपने आप मन को ये जिन जैसा काम दे दो कि तुमके परम धाम में रहना है, यहां आना है, आना है, जाना है, कोई काम हो तो किया, फिर अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। तो ये भी एक अभ्यास आप करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि कोई भी एक फार्मूला ज्यादा दिन नहीं चलता। आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे ना, 5-4 दिन चलेगा, उसके बाद वो भी ढीला हो जाएगा। तो हर रोज अपने लिए एक फार्मूला बनाना चाहिए, और अगर आप अमृत वेले का योग स्ट्रांग कर लेंगे तो आपका बाकी योग भी स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं क्या करता हूं, मैं रोज सुबह मुरली का वरदान और स्लोगन पढ़ लेता हूं योग में आने से पहले, तो वरदान का हेडिंग और स्लोगन उसके आधार पर, क्योंकि कुछ मिल जाता है ना आधार योग के लिए मन को, तो उसके आधार पर मैं योग लगाता हूं। उससे मैंने देखा मुझे फायदा होता है, मन इधर उधर नहीं जाता, तो उसी के मनन चिंतन में रहता है, थोड़ी देर बाद वो फिर लग जाता है। तो लगने के बाद तो मनन चिंतन ना हो वो अच्छा है। फिर बाबा भी कहते हैं कि आप अगर दृढ़ संकल्प करते हो कि मैंने योग लगाना है, मेरा मन नहीं जाए, और दृढ़ संकल्प को अटेंशन देते हो और उसके बाद उसका ध्यान रखते हो तो परिपक्व होता जाता है धीरे धीरे। अगर आपकी धीरे धीरे अवस्था परिपक्व हो जाएगी तो फिर आपको ये घट जाएगा। और दिन में खास तौर पर ध्यान रखना है, जो बाबा ने 4 टाइम का योग बताया हुआ है वो भी करना है, और रात को खास तौर पर सोने से पहले, वो बहुत जरूरी होता है, फिर आपका नया दिन शुरू हो सकता है। सोने से पहले सारे दिन की दिनचर्या अपनी आंखों के सामने लाकर, और जैसी भी है वो बाबा ने अभी भी वरदान में कहा है ऊपर दे दो, अपना वो दिनचर्या बाबा को सरेंडर कर देनी है, अच्छी है तो भी, अगर उसमें कुछ मार्जिन था तो भी, और उससे भी आपको मदद मिलती है। तो फिर आपकी नींद भी योग की अवस्था में हो जाती है, थोड़े टाइम में नींद भी पूरी हो जाती है, फ्रेश रहते हैं, और अगले दिन योग लगाने में पुराने दिन के व्यर्थ संकल्प नहीं आते। और व्यर्थ संकल्प इसलिए भी आते हैं कि वो पावरफुल होते हैं, माया का राज है, तो जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं और जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो ठंडी हैं, क्योंकि माया का राज है। आप किसी से ईर्ष्या कर लोगे तो बहुत तेज संकल्प आएंगे, नींद भी नहीं आएगी। किसी से दुश्मनी कर, क्योंकि माया का राज है, और अच्छे संकल्प होंगे ना वो ठंडे ठंडे आएंगे, बीच में ढीले भी हो जाएंगे, उनको ताकतवर बनाना है। तो शुद्ध संकल्पों को ताकतवर बनाने के काम में बिजी रहने से भी आपके व्यर्थ संकल्प घट सकते हैं। फिर वो लिखते हैं, अब भी मैंने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वह कैसे निकालें, उसमें लॉस भी हो सकता है, क्या 1 या 2 साल तक जमा रखें, समय कम है। अब ये पर्सनल क्वेश्चन है, बाबा कहते हैं हर एक को अपना सोचना है कि लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। जबकि सुबह सब कह रहे थे, दादी जी प्रश्न पूछ रहे थे, तो मम्मा का एक स्लोगन रिपीट किया था किसी ने, अपनी हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, ठीक है, और फायदा नुकसान ये देखना है कि हमें अपनी जरूरत के लिए अगर कुछ धन चाहिए उसको थोड़ा बहुत धन तो रखना होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसलिए बाबा ने हर एक को बताया हुआ है कि 4 हिस्से अपने धन के करने हैं, और 4 हिस्सों में 1 हिस्सा अपने भविष्य के लिए, कभी कैसा भी हो बाबा का ऑर्डर है, वो हमने बचा के रखना है, और 1 हिस्सा हमने अपने शरीर निर्वाह इत्यादि इत्यादि में चलाना है, और 1 हिस्सा हमने अपने लगातार यज्ञ में देते रहना है, ताकि वो रहे कि हमारा बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है, फिर वो वेस्ट हो जाए कुछ हो जाए उसके हम जिम्मेवार नहीं है। अगर हम अपने मन से होशियारी करें कि भाई ये जो लगातार यज्ञ में आहुति देनी है उसको भी हम इन्वेस्ट कर दें, ज्यादा हो जाएगा फिर हम देंगे, तो लोभ में आ जाता है, वो फिर आप धोखा खा जाएंगे। तो अपने लिए निश्चिंत होने के लिए जो यज्ञ वाले अभी आपको नियम शायद बहने बताएंगे भी, उस नियम के अनुसार चलना और निश्चिंत रहना है, ठीक है कि नहीं। ना ये सोचना मुझे कौन चलाएगा, अगर विनाश नहीं आया तो कौन चलाएगा, ये ऐसे ऐसे भी सोचते हैं। तो बाबा कहता है जैसी किसी का सोच होता है उसके अनुसार ही उसका धन लग जाता है, और अगर जो जो पहले मम्मा ने कभी सोचा कि मेरा भविष्य क्या होगा अगर विनाश ना हुआ, तो मम्मा ने अपने आप को संपूर्ण बनाने का ध्यान रखा, ना कि ज्यादा वर्षों का ध्यान रखा। तो अभी एक बहन जी कह रही थी कि मुझे ज्ञान में 40 वर्ष हुए हैं, या 40 वर्षों का ज्ञान मेरे में कितना आया है, हमने ये देखना है। ये बात धन पर भी लागू होती है, तो आपको अपने आप ये फैसला करना है। अब ये तो आपको मैंने सुनाया ही था कि घर में बच्चों और जुगल से चिड़चिड़ापन, इसमें यह है कि हम लौकिक में अगर जाते हैं, देह भान में रहते हैं और बच्चों को बच्चा समझते हैं, जुगल को लौकिक तरह से युगल समझते हैं, फिर उसी तरह से व्यवहार करते हैं और अपनी अलौकिक अवस्था में नहीं रहते कि ये भी मुझे अवस्था बनाने के निमित्त मिले हुए हैं, इनको भी मैंने सहयोग देकर इनकी भी अवस्था बनानी है, अपनी भी बनानी है, ये मुझे एक वर्कशॉप मिला हुआ है और मेरी अवस्था का टेस्ट है कि युगल क्या या कोई भी क्या, मुझे चिड़चिड़ापन आना ही नहीं चाहिए। चिड़चिड़ापन किसी न किसी अंदर के विकार की कमजोरी है, असंतुष्टि के कारण है। तो आप इसको खुद ही समझ सकते हैं सवाल को, उसको चिड़चिड़ापन पसंद नहीं है। अच्छा, फिर ये कहते हैं मुझे बाबा से योग नहीं लगता, इसका कारण क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है, ये भी सोचना कि मेरा बाबा से आज योग नहीं लगा, ये भी एक प्रकार का योग है। आप सोचो, गौर से सोचो कि कोई ये कहे कि देखो जी, मैंने बाबा को याद किया, मेरा बाबा से योग नहीं लगा। बाबा तो याद आया उसको, है? मेरे सामने एक बार अव्यक्त बाबा के पास एक भाई आए तो उन्होंने बाबा से बात कही कि बाबा, मैं आपसे योग लगाता हूं, मेरा योग आप तक पहुंचता है? उसने प्रश्न किया बकायदा बाबा से। अच्छा, तो बाबा ने मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा जब तुम लगाते हो ना, उससे पहले ही मेरे पास पहुंच जाता है। तो बड़ा खुश हुआ वो। बाबा ने कहा, तुम आप अपने ऊपर निश्चय रखो कि आप बाबा से योग लगाते हो, आपका योग अवश्य पहुंच जाता है, बाबा तो योग की भावना को कैच करते हैं। अच्छा, एक और आए, उन्होंने कहा, बाबा कभी कभी तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता, मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, कईयों का है ये क्वेश्चन कि कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी कम लगता है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि कभी कभी तो लगता है ना। हाँ बाबा, कभी कभी तो लगता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कभी कभी लगता है उसको बढ़ाओ, तो सारा टाइम भी लग सकता है। फिर बाबा ने कहा, औरों का दादी की तरफ इशारा किया, इनका योग लगता है ना। हाँ बाबा, दादी का तो लगता है। तो बाबा ने कहा, अगर इनका लग सकता है और आपका भी कभी कभी लगता है तो जरूर लग सकता है, आसान है, हैं? तो आप कोशिश करो। तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, क्योंकि योग एक सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म चीज है ना, ये तो मन का तार है। और प्रेम के संकल्प जो है, मन का संकल्प प्रेम के पेट्रोल से चलता है, और जितना पावरफुल प्रेम का पेट्रोल होता है और जितनी उसकी दिशा ठीक होती है वहां पहुंच जाता है। अगर आपने यहां से संकल्प चलाया बाबा के पास जाने का, प्रेम से चलाया, रास्ते में कोई और चीज का भी प्रेम है, उधर को मुड़ गया वो, तो थोड़ी देर वहां ही चला गया, फिर आप कहेंगे ओहो, मैं तो बाबा को याद करने के लिए किया था। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे से प्रेम बढ़ाओ, मैं तुमको क्या देता हूं, मैं सिर्फ संगम पर ही मिलता हूं, हैं? और मैं क्या हूं, कौन हूं, आपको क्या, कैसा बच्चे को अडॉप्ट किया है, तुम्हें क्या गोल्डन डायमंड चांस दिया है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। दो तीन दिन पहले भी मुरली आई थी कि अपने से बातें करो। तो आप अपने से बातें करोगे ना, तो बातें, मन की बातें करने से संकल्प खिसकेगा नहीं और आपका योग अच्छा लगेगा। योगी जीवन में भोजन का महत्व, प्रवृत्ति में रहते भोजन की शुद्धता। अब वास्तव में अगर हम, एक भी योगी घर में प्रभावशाली है और योगी जीवन के सब कायदों पर चलता है, सिर्फ इसमें ये नहीं कि मैं सेंटर में जाता हूं, मैं बाबा का स्टूडेंट हूं, घर वालों को पता नहीं उससे क्या लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा कि नेमी जैसे भक्ति में लोग मंदिर जाते हैं, फिर कहो मेरे भोजन में प्याज नहीं डालो, मेरे भोजन को ऐसे करो, वो अलग चीज हो जाती है। अगर हमारे योगी जीवन का टोटल प्रभाव है, मैं घर में भी योग लगाता हूं, घर में सारे नियम ऑब्जर्व करता हूं, मेरी बोल चाल चलन में وہ دکھتا ہے، میرے لوکک رشتے داروں پر بھی ان کا پربھاؤ ڈلتا ہے، زبردستی تو نہیں ہم کر سکتے کسی کے ساتھ کہ سارے لوکک چل پڑیں، لیکن ان کو رسپیکٹ ضرور ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کر پاتے، یہ کر پاتے ہیں، یہ مدھر بھاشی ہیں، ہے نا، یہ میٹھا بولتے ہیں، تو پرابلم آتی ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہماری طرح چلاتے نہیں ہیں، کوئی سمسیا آ جائے تو گھبراتے نہیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو ان کے اندر اتنی رسپیکٹ ہو کہ یہ ہمارے گھر کا گائیڈ ہے، ایک پرکار کے ہمارے گھر کا مہان آتما ہے، پھر وہ آپ کو کھانا تو کیا، اگر وہ سادھوؤں کو جا کے جنگل میں کھانا دے سکتے ہیں تو گھر میں ایسے ویکتی کو آپ کی اچھا کے انوسار بھوجن نہیں دے سکتے، اوشیہ دے سکتے ہیں، اگر ہم خود اپنے نیم ڈھیلے کر لیتے ہیں، ہر پرکار کے نیم ڈھیلے کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی اسی پرکار کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ بابا نے کہا ہوا ہے کہ میں نے مایا کو حکم دے رکھا ہے، کہ مایا بھی اسی کو تنگ کرتی ہے کہ ہم ہیں بھگوان کے گاہک، اگر ہم بھگوان کے گاہک ہیں تو مایا کوشش کرتی ہے مارجنل کیس میں کہ بھگوان کے گاہک سے ہٹا کر اس کو اپنا گاہک بنا لے، کیونکہ یہ میرا گاہک تھا، تو جب پہلے کوشش کرتی ہے، اگر ہم اس کی دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس کے گاہک بن جاتے ہیں پھر وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔ تو کئی یہ انوبھو کرتے ہیں کہ جو ہی ہم نے اپنے نیم ڈھیلے کیے اب ہمیں مایا نہیں آتی، کیونکہ مایا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے آپ کو کنورٹ کر کے اپنے کیمپ میں لے آئی، اب آپ اس کے بن گئے، اب اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو تنگ کرنے کی۔ تو جس کو مایا تنگ کرتی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ضرور میں اچھے ایشوری مارگ پر ہوں تو مایا مجھے ستاتی ہے۔ دوسرا بابا کہتا ہے کہ مایا کو یہ بھی ہے یا ادھر چل یا ادھر چل، اگر تم نے ایشور کے رستے میں چلنا ہے تو چل، اگر ایشور میں رستے میں چلتے چلتے بھی تمہارا من دویدھا میں ہے ایشور میں چلوں یا یہاں چلوں، تو مایا بھی چانس لے لیتی ہے، پھر اس کو کھینچ لیتی ہے کہ تیرا من ادھر جانے کا اصل میں ہے نہیں، ادھر آ جا۔ تو جس کو جو پرلوبن چاہیے ہوتا ہے، کسی کو دھن چاہیے ہوتا ہے، کسی کو بھوجن چاہیے ہوتا ہے، وہ دے کر اس کو کھسکا لیتی ہے۔ تو ہمیں یہ تو نمت ماتر چیزیں ہیں، ہم اگر اپنی یوگک اوستھا کو بڑھائیں گے تو یوگک اوستھا سے آپ کو جیسے جنم ملتا ہے، جیسے ہمارا جیون چلتا ہے، جیسے دکھ سکھ آتا ہے، یوگک اوستھا کے ساتھ ساتھ پریورتن ہو جاتا ہے۔ تو بیسٹ طریقہ یہ ہے ہمارا اپنی یوگک استھتی کو اونچا کریں، آپ کی چھوٹی چھوٹی پرابلم اپنے آپ ڈیزالو ہو جائے گی۔ باقی سارے گیان کے کوشچن ہیں، تو گیان کے کوشچنوں کے تو پھر اور سمے کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں یوگ میں بیٹھتے سمے کچھ سمے تک یوگ کی استھتی اچھی رہتی ہے، بعد میں سیوا کا چنتن چلنے لگ پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ سیوا کا چنتن تو اچھا ہی ہے نا، چلو یوگ نہیں لگ رہا تو سیوا کا چنتن تو اچھا ہی ہے نا، لیکن بابا کہتا ہے کہ سیوا کے سمے سیوا کا چنتن، یوگ کے سمے یوگ کا چنتن، کیونکہ اگر آپ کا یوگ کے سمے سیوا کا چنتن چلے گا تو کئی بار پھر ایسا ہوگا سیوا کرنے کے وقت یوگ کا چنتن چلے گا، ارے سب سے اونچا سبجیکٹ تو یوگ ہے، اسی سے سارے وکرم وناش ہونے ہیں، میں یہ سیوا کر رہا ہوں، مرلی سن رہے ہوں گے تو یوگ کے خیال آئیں گے، یوگ لگا رہے ہوں گے تو گیان کے خیالات آئیں گے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من کا بریک ڈھیلا ہے، کہ رات کو جیسے کوئی سونا چاہے اس کو نیند نہ آئے، اچھا کیسے سوؤں کیسے سوؤں یہ کروں، اور صبح اس کی آنکھ کھلنی ہے اس کی آنکھ نہ کھلے، پھر یدھ کر کے کھلے تو وہ تو تریتا والا ہو گیا نا، کہ یدھ کر کے سویا، یدھ کر کے جاگا، یدھ کر کے یوگ لگایا، یدھ کر کے ویرتھ سنکلپ کو بھگایا، اور یدھ کر کے سیوا کے سنکلپ کو ادھر گھٹایا، یہ نہیں۔ تو بابا کہتا ہے یدھ کو کس میں بدلنا ہے، محنت کو کس میں بدلنا ہے، محبت میں، یہ پریم کا مارگ ہے۔ تو بابا سے پریم بڑھائیں گے، بابا سے یوگ کے تو بہت ہی آپ کے کتنے دھام ہیں، آپ کے کتنا ان کی ڈیٹیل ہے، बाबा कहता आपको मैंने समय में भी सबसे ऊंचा बिठाया है, स्थान में भी सबसे ऊंचा बिठाया है, कितने युगों का चक्कर है, अपनी लाइफ को याद करें, अपने सतोप्रधान अवस्था को याद करें, तो आप 5 घंटे योग में बैठ सकते हैं, टाइम तो आपको पता ही नहीं लगा, उड़ जाएगा। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि योग के समय सेवा के संकल्प आना, मैंने ब्रेक ढीला, उसको ये नहीं समझना अच्छा संकल्प है। जब योग की स्थिति अच्छी रहती है तो विद्यार्थी आने लग पड़ते हैं, जब धंधे से थोड़ा कम समय मिलता है, योग में थोड़ी कमी होती है तो विद्यार्थी कम आते हैं, फिर योग में चिंतन चलने लग पड़ता है। बाबा कहता है आप विद्यार्थियों की फिक्र ना करो, जैसे शमा के ऊपर परवाने आते हैं, आप अपनी अवस्था को ऊंची करो, आप विद्यार्थी अपने आप आएंगे। आप ये ना सोचो कि विद्यार्थियों के लिए धंधा छोड़ दूं थोड़ा, ना, धंधा जितना जरूरी है उतना करना ही है, धंधे में भी आप योग में रह सकते हैं, योग जितना लगाना उतना लगाना ही है, उसको बढ़ाना है, और विद्यार्थी अपने आप आएंगे। बाकी ये कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि हम विद्यार्थी बढ़ाने के लिए धंधा कम करें ताकि हमारा योग ज्यादा लगे ताकि हमारे विद्यार्थी ज्यादा, नहीं, आप धंधा भी बाबा का समझ के करो। बाबा कहता है मैं धंधे भी चेंज करवा देता हूं, धंधे में बरकत भी डलवा सकता हूं, मुरलियों में सीधा है, अगर आप ज्ञान के योग के सीधे मार्ग में चलेंगे आपका रास्ता क्लियर, और अगर आपने उसमें थोड़ी ढील की तो आपके रास्ते में कई प्रकार के नेचुरल विघ्न आ जाएंगे। आ गए हैं दादी जी? अच्छा, अभी दादी जी आ गए हैं। ओम शांति।
ओम शांति। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि सागर की लहरों ने हमको अनंत खजानों से भर दिया।